तो आज एक विशेष दिन है कि आज के ही आचार्यों के विशेष में सीता देवी जो कि भगवान रामचंद्र जी के अंतरंग शक्ति सीता देवी के आज आविर्भाव तिथि है। आज नित्यानंद प्रभु के शक्ति कौन जाह्नवा देवी का भी आज आविर्भाव तिथि है। मधु पंडित जो कि राधा गोपीनाथ जी के प्राकट्य के कारण है, तो जिनकी जिनको माध्यम करके राधा गोपीनाथ प्रकट हुए थे उस मधु पंडित प्रभु की भी आज तिरोभाव तिथि है। वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही रिजेंसील हु थिंक्स दैट वैष्णव इज डाय, क्योंकि वैष्णव की कोई मृत्यु नहीं होता है, वो सदा जीवित रहते हैं। जब ये शरीर त्यागते तो आज नित्य लड़ा में प्रवेश करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जब तक के संसार में रहते फिर हरि नाम के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले हम जैसे सीरियल दिया हुआ कैलेंडर में सबसे पहले सीता ठाकुरानी की बसरी सीता देवी रामचंद्र जी के अंतरंग शक्ति सीता देवी के आविर्भाव तिथि है। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के दसम अध्याय के 55 नंबर श्लोक जिसमें सीता देवी के बारे में कुछ कहा गया है उसकी चर्चा की जाएगी। बोर्ड में श्लोक लिखा गया है उसी की आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 10 भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं, इसी अध्याय की 55 नंबर श्लोक जो कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती भीया हीया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती हिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन मनः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती हिया हिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। शब्दार्थ प्रेम्णानुवृत्त्या प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण शीलेन ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा प्रश्रय अवनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार सती सती साध्वी भीया भयभीत होने के कारण हिया लज्जा से च भी भावज्ञा पति के भाव को समझकर भरतुहु अपने पति के सीता सीता देवी ने अहरत मोहित कर लिया मनः मन को। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इसी प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। दोहराइए, सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान रामचंद्र के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य, जिस तरह भगवान रामचंद्र आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत थे, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संजोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। जज्जत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवेतर जना। महापुरुष जो भी आचरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा व नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें स्वयं आचरण में, तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंद है इस जगत से नारकीय दशाओं का नाम निशान मिट जाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गुरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान रामचंद्र जी के मन को पूरी तरह मोह सकी। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की गश्त में थे, उन्होंने मदुराई के आसपास वहां पर एक रामदास विप्र नाम के भक्त ने महाप्रभु को निमंत्रण किया। किसके लिए? भोजन के लिए। मध्याह्न में उनकी स्थान पर भोजन करने के लिए बुलाया। तो गौरांग महाप्रभु ने कृतमाला नदी में स्नान करके दोपहर के समय उसके पास पहुंचे। आप पहुंचे तो वो कुछ कुकिंग फुकिंग कुछ नहीं किया है, बैठ के क्या कर रहा, ध्यान कर रहा और रो रहा। तो महाप्रभु गए कि देखो महात्मा, आप तो मुझे निमंत्रण दिए थे प्रसाद है, आज के लंच आज मैंने मध्यान्ह में भोजन के लिए बुलाए थे, और तो आपका तो चूल्हा भी अभी तक लगा नहीं, कब खिलाओगे। तो उन्होंने पूरे उन्होंने भाव सेवा में थे, ध्यान कर रहे थे भगवान की लीला। वो कहे कि अभी तो कुछ है नहीं है, लक्ष्मण गया जंगल में, लक्ष्मण गए और सो वहां से कुछ कलेक्शन करके लेके आएंगे हैं, कुछ सूखा लकड़ी फल जो कुछ जब जंगल में लेके आएंगे, फिर चूल्हा लगेगा हैं, इस बार कुकिंग होगा, सीता कुकिंग करेंगी, भगवान रामचंद्र जी को अर्पण की जाएगी, फिर आपका प्रसाद मिलेगा। लेकिन उनके सेवा मनोभाव को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे ही मैंने भाव से भगवान की सेवा के चिंतन में है। लेकिन ब्राह्मण बात में कुकिंग करके थोड़ा लेट में तो महाप्रभु खिलाया, लेकिन महाप्रभु ने देखे कि ये स्वयं नहीं खाया, अब बड़े दुखी था, बहुत चिंतित है, रो रहा था। महाप्रभु ने पूछे आपका दुख क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हाँ, भगवान रामचंद्र जी की अंतरंग शक्ति स्वयं सीता देवी की कौन स्पर्श किया, एक राक्षस कौन, रावण जैसे दुर्दांत राक्षस इनको केस पकड़ कर इनको बाएं इनको बलात्कार करके खींचकर लेकर इन शरीर को स्पर्श करके लेके गया, इनको लेके बंदी बनाया। ये बात को जो मैं सुनता हूं, मैं अपने क्या दुख को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, रो रहा हूं, आंख से अश्रु की धारा अपने आप बह रहा है, इसलिए मैं सदा दुखी रहता हूं। ये कैसा संभव है कि माता सीता के शरीर को स्पर्श करके रावण जैसे राक्षस केस पकड़ कर इनको लेकर रथ में बलात्कार से बैठे के लेके गया, ये कैसे संभव है, कहकर तुरंत रोने लगा। फिर तो गौरांग महाप्रभु ने इसको समझाए कि देखो तुम असली सीता को रावण को स्पर्श करने का अधिकार ना उसके सामर्थ्य था। सीता दो सीता है, एक तो जनक नंदिनी सीता है और दूसरे एक सीता की जो भूमिका निभा रही थी रामायण में वो है वेदवती, जो कुशध्वज और मालावती की पुत्री थी, कि वर्णन के पद्म पुराण में आता है। एक सीता थी जो कि कुशध्वज और मालावती के पुत्री रूप में थी, और वो जाकर पहले पुष्कर में और बाद में गंधमार्दन पर्वत में कठोर तपस्या करने लगी है। उसकी क्या इच्छा थी, भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा रखी थी। लेकिन जो कठोर तपस्या में मग्न थी नारायण को पत्नी अपने शरीर पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखकर एक दिन रावण घूमते घूमते उस गंधमार्दन पर्वत में पहुंच गया, और वो भी उसको भी भूखा प्यासी थी था रावण, तो उसे घूमते घूम रहा था, घूमते उसके आश्रम में आ गई। तभी वेदवती ने रावण को स्वागत किया और उसको बैठने का आसन दिया, आश्रम में जो कुछ फल मूल जो था उसको भोजन के लिए दिया। लेकिन रावण तो राक्षस है, खाने पीने के बाद तो तृप्त होने के बाद फिर उसकी काम वासना जागृत हुई, उसको देखकर वेदवती को सुंदरी बालिका के रूप में युवती बालिका देखकर युवती कन्या हाँ उसको अपना पत्नी बनाने के लिए फिर इच्छा प्रकट की। तो वेदवती ने इसके इनकार कर दी, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर सकती हूँ, दूसरे को ही नहीं है, इसी के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, तुम यहां से तत्काल भाग जाओ। लेकिन रावण तो जोर जोर से हंसने लगा, हंसकर बलात्कार करने बाहुबल से उसको स्पर्श कर खींच के ले जाना चाहता था, किसको, वेदवती को। वेदवती कहा कि तू राक्षस, मेरे शरीर को स्पर्श किया, तू मेरे सतीत्व को नष्ट किया, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तेरे मृत्यु को कारण मैं ही बनूंगी, तेरी मृत्यु के कारण मैं बनूंगी, और तुम जिस शरीर को स्पर्श किया है अभी तेरे सामने मेरे जोगाग्नि से वही शरीर को मैं भस्म कर दे रही हूं। ऐसे कहकर अब जोग शक्ति से अग्नि प्रकट करके उसी में वो स्वयं भस्म कर लिए स्वयं को, कौन, वेदवती ने। इसलिए महाप्रभु ने समझा है, देखो वो वेदवती, वो जो माया से जिसको रावण ने लिया था ये वही वेदवती थी जिसने रावण को वध के कारण बनने के लिए पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतिज्ञा थी। हाँ, इसने जब भी भगवान ने जब लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा के बारे में वाल्मीकि रामायण में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अन्य पुराण में इसकी वर्णन है, पद्म पुराण में इसकी वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने जब सीता को छोड़कर गए रामचंद्र को मदद करने के लिए, चूंकि हरिण के पीछे भगवान गए थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण रेखा की तीन लाइन अंकित करके गए थे कि इस लाइन को प्रस नहीं करना। इस रामचरित मानस में वाल्मीकि रामायण में इसकी वर्णन नहीं है, लेकिन इसकी वर्णन अन्य पुराण में भी है, पद्म पुराण आदि अग्नि पुराण अन्य पुराण में से वर्णन है। तो इसलिए जब रामचंद्र ने कही कि जो रावण गया बलात्कार, मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, जब जाकर सीताजी के हाथ हैं, सीताजी कहा बाहर आओ, बाहर तीन रेखा को प्रश करके आओ, नहीं तो मैं भिक्षा नहीं लूंगी, ब्राह्मण वापस चले जाऊंगे घर के, नहीं आपके कुटिया से आपके सर्वनाश होगा, क्योंकि अतिथि किसी गृहस्थ के घर से जब भिक्षा न लेकर वापस चले जाता है तो गृहस्थों की ऐसे मानना है कि घर कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसलिए सीताजी जब ही क्रॉस रेखा क्रॉस करके एक पैर बाहर रखते ही वो खींच कर लेके गया है, सीता को हाथ पकड़ने के पहले से ही जो मूल सीता को अग्निदेव ने ही छुपा ली अग्निदेव की, और ये नकली सीता वहां से प्रकट हुई, कौन वेदवती, जो कि प्रतिज्ञा की थी कि ये रावण की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समझाया रामदास विप्र को कि वही नकली सत्य सीता जो वेदवती है उसी को रावण ने लेकर गया था, असली सीता को नहीं, स्पर्श करने की इसको अधिकार कहाँ है रावण का है? लेकिन इसको फिर भी थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन पूरे पूरे विश्वास नहीं हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते बढ़ते जब रामेश्वर में पहुंचे, वहां पर आप देखे कि सब संत लोग ने बैठकर कूर्म पुराण की चर्चा कर रहे हैं, और कूर्म पुराण में ये बात वहां पर स्पष्ट लिखा गया कि किस प्रकार ये वेदवती जो कि माया सीता बनी थी, जो कुशध्वज और मालावती की पुत्री थी, वो माया सीता बनकर रावण की मुक्ति के कारण बनी थी, पूर्वजन्म की कारण कहानी वहां से पृष्ठा पर लिखा हुआ था। महाप्रभु बोले ये प्रमाण के रूप में ये पृष्ठे को लेकर यदि मैं ब्राह्मण को देगा वो शांत हो जाएगा, विश्वास होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वहस्त में जो पेज में लिखा था उस पेज को स्वयं स्वहस्त में लिखे, अपने लिखकर उस पेज को बोले कि आप लोग इस पेज को रखो पुराण में, ओरिजिनल पेज मुझे दो, नहीं तो ब्राह्मण विश्वास करने वाला नहीं, मेरे हाथ हैंड राइटिंग लिख के देने से विश्वास नहीं करे। इसलिए महाप्रभु ने फिर वापस आकर उस ब्राह्मण को उस रामदास विप्र को देखा है, देखो ये कूर्म पुराण की पेज है, इसमें साक्षात लिखा गया है कि माया सीता वेदवती नहीं, जो कि पूर्व जन्म में रावण की मृत्यु के कारण बनने की प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने ही ये भूमिका निभाया। फिर लंका जब भगवान ने ध्वंस करके ही रावण को बध करके जो वापस आए, फिर अग्नि परीक्षा देना पड़ा किसको, सीता जी को। उस समय फिर अग्निदेव ने जब मूल सीता को प्रकट करा के भी रामचंद्र जी को समर्पण कर दिए। इसलिए दो सीता है, एक तो ये वेदवती जो कि सीता बनी थी ये माया सीता बनी थी, लेकिन मूल सीता जो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, तो इनकी जन्म कहां पर हुई थी, विदेहराज कौन महाराज जनक की पुत्री के रूप में जन्म हुई थी, लेकिन इनकी जन्म ऐसा ही माँ की गर्भ से नहीं हुई थी, अजनास अजोनी संभूता। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता कि जो महर्षि जनक ने सीता की जन्म वृत्तांत को कह रहे हैं उनको विश्वामित्र को, विश्वामित्र और रामचंद्र राम लक्ष्मण जो गए थे उन यज्ञ में सीता जी की जन्म वृत्तांत वहां संक्षेप में, खाली संक्षेप में उन्होंने कहते कि तो एक बार मैंने यज्ञ स्थल को समान करने के लिए स्थान को पूरा समतल करने के लिए हल जोतकर सोने के हल जोतकर उसमें स्वयं चस रहे थे, कौन जनक राजर्षि जनक जब इस चस रहे थे, ये 12 महाजन में एक महाजन भी है, तो उस घर में स्थान को समतल कर रहा था, लंगड़ के जो अग्रभाग उसको कहते इसको सीता कहते, इसको भी सीता कहा जाता, तो अग्रभाग में टकराते हुए एक क्या निकला, एक कन्या, ये कन्या वहीं से प्राप्त हुआ, कहीं कहते बक्स था बक्स के निकले, लेकिन बक्स के अंदर एक कन्या दिव्य कन्या की प्राप्त हुई, क्योंकि ये लंगल के अग्रभाग से जिसको सीता कहते वहीं से ये प्रकट हुई, इसलिए इसके नाम भी क्या रखा गया, सीता। इसी प्रकार सीता जी की प्राकट्य सीता नवमी, राम भी प्रकट हुए नवमी में और ये सीता जी भी प्रकट हुई नवमी में, राम नवमी और सीता नवमी, बाल कृष्ण की क्या कृष्णाष्टमी में है, भाद्र से भाद्र महीना की कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्षी का अष्टमी में कृष्ण और शुक्ल पक्षी का अष्टमी में राधा, वो अष्टमी में अष्टमी में ठीक सेम यहाँ पर इस प्रकार ये नवमी नवमी दोनों हैं। राम जी की भी आविर्भाव तथा चैत्र शुक्ल नवमी तिथि में रामचंद्र जी की आविर्भाव, उसी प्रकार सीता जी की भी आज इस नवमी तिथि में ही आविर्भाव हुई। तो इसलिए सीता जी के आविर्भाव के बारे में ब्रीफली मैं कहा, क्योंकि तीनों के बारे में बोलना पड़ेगा, एक नहीं तो एक ही तो पूरा क्लास हो जाएगा। हाँ, तीनों के बारे में संक्षेप में आपको केवल विवरण दी जाएगी। इसलिए सीता जी किसी माता पिता के गर्भ में, कहीं माँ की गर्भ से जन्म नहीं हुई, जो मूल सीता है रामचंद्र जी की अंतर्गत शक्ति, वो हाँ अजोनी संभिता संभूता है, अपने ऐसे ही महाराज जनक की यज्ञ से ही, यज्ञ स्थल से ही समतल करने के समय में लंगल के अग्रभाग से ही सीता से ही ये प्रकट हुई। आज जाह्नवा माता, जाह्नवा माता के बारे में आप सब जानते हो, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक महान आचार्य जी की भूमिका भी निभाई, ये नित्यानंद प्रभु के शक्ति है। साधारणतः हम देखते कोई माता जी लोग कोई गुरु की भूमिका नहीं निभाते हैं आचार्य जी, लेकिन ये एक उदाहरण है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जाह्नवा माता, जिनको नित्यानंद प्रभु ने स्वयं आदेश देकर गए थे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विषय। और इस प्रकार अन्य भी कई, गंगा माता गोस्वामिनी, कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, कई दो ऐसे गिने चुने कुछ लोगों के नाम सुनाई पड़ता है जो कि इस गौड़ीय संप्रदाय में भी हजारों संख्या में शिष्य स्वीकार करके ही आचार्य जी की भूमिका निभाए थे। तो उनमें से सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति, ये जाह्नवा माता की वर्णन आता है। नित्यानंद प्रियाम प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिनीम श्री जाह्नवीश्वरी वंदे तापत्रय निवारिणी। जाह्नवा माता की वंदना है, प्रणाम मंत्र की, ये नित्यानंद प्रभु की प्रिया है और प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिनी, ये क्या देने वाली है, प्रेम भक्ति रूपी रत्न हैं वो प्रदान करने वाली है। श्री जाह्नवीश्वरी ईश्वरी वंदे, ये कोई साधारण नहीं, ईश्वरी है स्वयं, जैसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी स्वयं बलराम है, इसी प्रकार ये भी उनके ही बलराम जी की ही शक्ति। कौन, रेवती या बारुणी, दो पत्नी थे किसकी, बलराम जी की सास। तो ये उन्हीं की शक्ति है, जाह्नवी ईश्वरी वंदे तापत्रय निवारिणी, त्रिताप क्लेश को हरण करने वाली है, कौन, जाह्नवा। इसलिए गौरगण देश दीपिका में कहते कि श्री वारुणी रेवत वंश संभवे तस्य प्रिय द्व वसुधा च जाह्नवा श्री सूर्यदासस्य महात्मन सुते कुकुब्जी रूपस्य च सूर्य तेजसः। कुकुब्जी रूप में जो इनकी पिता बने थे, रेवती का पिता के रूप में प्रकट हुए थे बाद में ब्रह्मा जी के निर्देशन में, तो अपने पुत्री का किसको, रेवती को लेकर आए थे द्वारका में बलराम जी के साथ, इनके परिणय हुआ था। वही कुकुब्जी इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में सूर्यदास पंडित, सूर्यदास सरखला या इनको सूर्यदास पंडित भी कहते हैं, रूप में ये अवतीर्ण हुए थे और उन्हीं की ही दो पुत्री थे वसुधा और जाह्नवा, इनको कोई कोई रेवती और बारुणी भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कश्चित श्री वसुधा देवी कलावपी विवृण्यते अनंग मंजरी में कैचित जाह्नवाश्च प्रचक्षते। ये भी गौर गणदेश दीपिका में कहा गया कि कोई कोई जाह्नवा माता को अनंग मंजरी कहते हैं, जो कि राधारानी के छोटे बहन के रूप में कृष्ण लीला में जो भूमिका निभाई थी, और कोई कोई इनकी ही कला जाह्नवा वही अनंग मंजर की कला के रूप में वसुधा को भी कोई कोई कहते हैं। लेकिन उभयस्तु समीचीनम पूर्व न्यायम सताम मत, सात संत लोक ने दोनों को ये सही समझते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोक में लोकाचार में हम जाह्नवा माता को क्या मानते हैं, अरे हैं क्या मानते हैं, अनंग मंजरी है, अनंग मंजरी के अवतार के रूप में ये मानी जाती हैं। तब तो रेवती या अनंग मंजरी के मिश्रित अवतार व मिलित अवतार के रूप में भी ये मानी जाती है। तो इस प्रकार इनकी जो उसी शालिग्राम विलेज नवदीप पास में एक शालिग्राम विलेज में कमसारी मिश्र तथा कमला देवी पति पत्नी ब्राह्मण परिवार में निवास करते थे गृहस्थ जीवन में। तो उनके पांच पुत्र थे, पांच पुत्र उनमें से इससे बड़े थे सूर्यदास, फिर गौरीदास, इसके साथ दामोदर, जगन्नाथ, कृष्णदास और नृसिंह चैतन्य, इस प्रकार पांच पुत्र उनके थे। तो उनमें से ये थे गौरीदास पंडित, दोनों विशेष रूप में विख्यात है, गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित। गौरीदास पंडित स्वयं सुबल सखा के अवतार थे और सूर्यदास पंडित अभी आप सुने किसके अवतार थे, कुकुज जी जो कि रेवती के पिता के रूप में द्वापर में भूमिका निभाए थे। तो ये सूर्यदास पंडित के ही दो पुत्री थे, क्या कौन कौन, वसुधा बड़ी थी और जाह्नवी छोटी थी, दो पुत्री थे। लेकिन ये दोनों पुत्री बचपन से ही बड़े प्रभावशाली, साधारण कन्या नहीं थी, ये भक्ति में सदा तत्पर रहने वाली थी, सदा ये बलराम जी की ही चिंतन करते थे, बलराम जी की प्रेम, उनकी फोटो रखना, उनकी पूजा करना, उनकी चिंतन करने में व्यस्त रहते थे। तो इस प्रकार जो भी ये आस्ते आस्ते प्राप्त वयस्क में आ गए, अब जो भी विवाह की उम्र इनकी हो गया, तो उनके पिताजी ने उस समय ब्राह्मण लोग ने एक एक अपने कन्याओं को शादी करने के लिए एक मध्यस्थी व्यक्ति को नियुक्त कर देते थे, वो जाकर फिर ढूंढ के कहीं उनके इनके उपयुक्त पति को ढूंढ के लाता था। तो इस प्रकार एक व्यक्ति था कृष्णदास, जिन्होंने जिनको नियुक्त करके देखे रखे थे कि ढूंढने के लिए जाह्नवर और वसुधा की लाइक, कोई पहले वसुधा बड़ी थी उसके शादी का पहले होना था, कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढना के लिए। ये एक दिन घूमते घूमते जाकर शिवा संगन में पहुंचे, शिवा संगन में नित्यानंद प्रभु बड़े उच्च आसन में बैठे हुए थे और वो पहने थे वस्त्र, कैसे नीले वस्त्र पहने हुए थे, पूरे शरीर में अलंकार छाया हुआ था, रत्न अलंकार विभूषित, सभी हीरा लीला मोती माणिक के दिव्य अलंकार विभूषित थे, इतने सुंदर दिखाई पड़ते थे कि सभी भक्तों को इच्छा होता था कि ये नित्यानंद अकेले रहना ठीक नहीं, ये तो अवधूत है, अरे ऐसे ड्रेस पहनता, लेकिन इनकी बामोभाग से यदि कोई इनकी ऐसा उनकी पत्नी यदि साथ में होता, जुगोड़ जोड़ी बचे बड़े अच्छा लगते, ऐसे ही सबकी इच्छा प्रकट हो रहा था, भक्तों की इच्छा। क्योंकि इसलिए अद्वैत आचार्य भी चाहते थे नित्यानंद को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, और महाप्रभु के साथ इसलिए पुरी में कई बार उन्होंने बातचीत कर करके इसका महाप्रभु से सेंक्शन ले लिए थे, परमिशन ले लिए थे, क्योंकि अवधूत रहेगा तो बार बार नवद्वीप से भागेगा, नवद्वीप में प्रचार कैसे होगा, आप स्वयं भाग के आ गए इधर संन्यास लेकर पुरी, और ये भी भाग जाएगा वहां से, ये भी आए कि आप जहां वहां रहेंगे तो बंगाल में प्रचार कौन करेगा। तो इसलिए देखिए इसको गृहस्थ आश्रम बांध देने से पत्नी बच्चे पत्नी के साथ रहेगा तो फिर भागेगा नहीं इधर उधर, है वहीं रहेगा, ऐसे अद्वैत आचार्य के प्लान में सहमति दिए गौरांग महाप्रभु। इसलिए सभी लोग सोचते थे भी इनकी कुछ विवाह कुछ व्यवस्था हो। ये जो मध्यस्थी को ये श्री कृष्णदास को ये नियुक्त किए थे, इन्होंने जाकर देखा नित्यानंद को ऐसे ही दुल्हन के रूप में, तो उन्होंने वहां से आया उसके मन में भी ऐसे ही भावना आया कि हाँ ये सूर्यदास ने सूर्यदास पंडित का जो वसुधा की पति बनने की उपयुक्त है, देख रहे हो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने आकर सूर्यदास पंडित को ये प्रपोजल दिया कि सूर्यदास मैंने तो एक तुम्हारे वसुधा के लायक एक बार देखा, लेकिन पता नहीं आपको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो कौन है बार बार पूछे थे, कहे कि वो जिनको लोग अवधूत कहते हैं, क्या नाम, नित्यानंद अवधूत, लेकिन वो तो मैं आज उनकी रूप छटा और शोभा को देखा, ये तो दिव्य अलंकार से विभूषित थे, नीला वस्त्र पहनकर राजकुमार के समान दिखाई पड़ते थे, शरीर की इतनी ज्योति और चमक को देखकर मैं बड़े मोहित हुआ और उनकी अंतकरण की भावना मेरे माध्यम से तुम्हारे पास आ गया, इसलिए तुम्हारे कन्या वसुधा को नित्यानंद के साथ में शादी देना ठीक रहेगा। लेकिन सूर्यदास पंडित थोड़ा इसे नाराज रहे, बोले ये कैसा है, मैं कन्या को एक अवधूत को कैसे दे दूंगा, अवधूत सन्यास को दे दूंगा, प्रभुपा जी कहते सन्यास नहीं लेते नित्यानंद प्रभु, कोई नित्यानंद प्रभु के सन्यासी थे बाद में साधे, ऐसा नहीं। नित्यानंद प्रभु अपने नाम रखे नित्यानंद स्वरूप, वो लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा लिए थे, लेकिन स्वरूप अर्थात एक ब्रह्मचारी का टाइटल होता स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप, वो ब्रह्मचारी थे। ऐसे ही घूमते थे अवधूत की तरफ, लेकिन वो संन्यास नहीं लिए थे नित्यानंद प्रभु। लेकिन फिर भी भागवत में कहते कि धर्म व्यतिकरण दुष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजयसाम न दृष्ट सर्वभोज यथा बन्नी, जैसे बन्नी सब कुछ खा के हजम कर सकता है, ऐसे ही जो विशेष रूप में शक्तिशाली महापुरुष होते हैं वो धर्म के नियम को, ईश्वर ईश्वर स्वयं भगवान कैसे साहस होता धर्म के नियम को व्यतिक्रम करना है, क्योंकि ये धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भागवत में भी ये कहा गया बलराम की बारे में कि वो ऐसे ही है, इनकी थोड़ा ऐसे कभी कभी लोकाचार दृष्टि से जिसको दिखाई पड़ता कि ऐसे करना ठीक नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा ऐसे ही कभी कभी व्यतिक्रम होने से पर भी ये दोषाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो नित्यानंद प्रभु ऐसा कुछ नहीं था, वो ब्रह्मचारी थे, शादी करना गृहस्थ आश्रम में आना कोई गलत नहीं था। प्रभुपाद जी इस प्रकार इसको व्याख्या करते हैं। तभी नित्यानंद जब एक प्रपोजल दिए ब्राह्मण ने कि आपके वसुधा के योग्य लायक पति नित्यानंद है, आप यदि बोलोगे मैं जाकर वहां पर बात को पूरा ठीक कर लूंगा, उनसे बातचीत करके शादी फिक्स कर लूंगा। लेकिन सूर्यदास पंडित सोचे कि ये कैसा है, एक अवधूत को मेरा कन्या कैसे दे दूंगा, भीख मंगा व्यक्ति घूमते रहता है, उसका कोई घर बार कोई टिकना नहीं है, कहाँ से आए क्या है मेरे को जाति गोड़ो कुल कोत्र कुछ पता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नाराज, थोड़ा बोले नहीं, कुछ मौन रहे ब्राह्मण, फिर नाराज होकर अपने घर में चला गया। लेकिन उसी दिन रात को सूर्यदास पंडित स्वप्न देखे हैं, हड़ा मुसल धारण करते हुए, नीला वस्त्र पहनते हुए, ताड़ध्वज रथ में बैठे हुए हैं, एक कान में कुंडल है दूसरे कान में कुंडल नहीं है, कि नित्यानंद प्रभु ने एक कुंडल को रख दिए थे नाग को बंधन करने के लिए कहा मयूरेश्वर में, तो बड़ा अलग कहानी है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्ति कहते कि सूर्यदास मुझे पहचानो, पहचानते मुझे कौन। सूर्यदास चमक के देखी दिव्य रथ है, दिव्य अलंकार विभूषित व्यक्ति साक्षात बलराम जी से लिख रहे हैं, हड़ा मुसल धारण किए हैं, तो उनको देखकर सूर्यदास उनको प्रणाम करते हैं, स्वप्न में देख रहे थे। तभी उन्होंने कहे कि सूर्यदास तुम मुझे पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारे दोनों कन्या को ही शादी करने वाला हूं, कह के अंतर्ध्यान हो गए। स्वप्न जब तोड़ा तो तोड़ गया, अब देखिए ब्रह्ममूर्त हो चुका है, बड़े आश्चर्यचकित रह गए, साक्षात बलराम मेरे कन्या को शादी करेंगे बोल रहे हैं। तो बड़े आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे, लेकिन बड़े सारे परिवार वर्गों को बुलाए, तत्काल बुलाकर इस बात को बोल रहे थे। लेकिन ये कहानी जब सुन रही थी उनकी बड़े लड़की जो वसुधा, ये सहज प्रेम इसकी उमड़ गई, वही वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। और उसकी चेतना को लाने के लिए कई प्रकार की वैद्यों को बुलाया, कितनी प्रकार की व्यवस्था किए, लेकिन वो चेतना वापस नहीं आई। सब घर में रोने लगे, सोचे कि वसुधा की मृत्यु हो गया। उनके छोटे भाई गौरीदास पंडित बाजू में रहते थे, भाग भाग के आए हैं। आज भी सूर्यदास पंडित और गौरीदास पंडित के घर कहाँ पर है, कलना में, अंबिका कलना में, बाजू में है। तो भाग भाग के आए गौरीदास पंडित, कहे कि तुम क्या किया, तुमसे ब्राह्मण ने बताया था शादी है तुम्हारी कन्या वसुधा के साथ नित्यानंद के साथ, तुम मना किया क्यों, तुम जानते नहीं नित्यानंद वही स्वयं बलराम है। गौरीदास पंडित तो उनके परिचय जानते थे, तुम जल्दी उस ब्राह्मण के हाथ में खबर भेजो नित्यानंद के साथ तुम्हारी कन्या की शादी का, देखो तुम्हारी कन्या सुस्त हो जाएगी। गौरीदास की वचन को पालन करते हुए ब्राह्मण को फिर दोबारा जो नित्यानंद प्रभु के शिवास के अंदर में भेज दिए शादी का के लिए, आज ब्राह्मण पहुंच गया, जाके कहा, सभी उत्फुल्लित हो गए, अद्वैत आचार्य शिवास ठाकुर और जितने भी सारे वैष्णव मंडली सभी इसका सेंशन कर दिए, तुरंत राजी हो गए। जो इसी हुए ब्राह्मण जाकर वो शादी फिक्स करके इधर आया, तुरंत ही वसुधा फिर चेतना प्राप्त कर लिया है, सुस्त हो गई। तभी सूर्यदास पंडित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय नित्यानंद प्रभु के, बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु के विवाह की बारे में पहले से उनकी जो शुभाकांक्षी एक मित्र जो कि नित्यानंद प्रभु की साक्षात भगवान के रूप में मानता था, बड़गाछी गांव में रहने वाले ये दूसरे कृष्णदास, इन्होंने सारे शादी का खर्चा वहन करने के लिए तैयार हो गया। कौन? कृष्णदास, बड़गाछी गांव में। तो इसलिए अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर अन्य सारे गौ जितने भी नित्यानंद पार्षद गौर पार्षद सब एकाठी होकर नित्यानंद प्रभु को दुल्हन के रूप में सजाकर बड़े आडंबर के साथ एक राजपुत्र की शादी के समान इनको बैठा कर लेके गए हैं। कहाँ? बड़गाछी गांव में गए। और बड़गाछी गांव में कृष्णदास के घर में पधारे और वहीं से फिर शादी प्रोसेशन निकला। कहाँ? उस समय शालिग्राम कहते कि उस समय शालिग्राम गांव में सूर्यदास पंडित गौरीदास पंडित सो रहते जो कि आज अंबिका कलना में दिखाई पड़ रहे। तो ये शादी का प्रोसेशन गया है, वहाँ गया, शाम के समय पहुंचे और गौरीदास पंडित आनंद में बिहोल हो गए। उनकी पत्नी और सभी सूर्य ने सॉरी सूर्यदास पंडित स्वागत किए हैं। तभी तभी गौरीदास पंडित सारे पांच भाई आ गए, सब स्वागत करके नित्यानंद को लेके गए। उस यात्रा में विवाह यज्ञ हुआ, विवाह विभाग भी एक यज्ञ कहते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी ये भी क्रिया है ये विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ में ये बैठे, तभी ब्राह्मण लोग ने सब मंत्र उच्चारण करके ही कर्मकांड विधि से शादी पूर्ण कर दी। किसका? नित्यानंद और वसुधा। जब नित्यानंद प्रभु आ रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन है, वसुधा ने छात के ऊपर से देख रही थी छुप कर, किसको? नित्यानंद की शोभा को देख रही थी। तब से वो देख कर ही बिहोड़ हो गई थी। उनके छोटे बहन भी देख रही थी। कौन? जाह्नवा। तभी नित्यानंद प्रभु के साथ वसुधा की तो परिणय हो गया है, जथा रावण से तथा मंदोदरी गांव के जो है तो उच्चारण करते कैसे कर्मकांड शादी में आपको पता है। तारास जथा रावण जब जथा बालिश्य तारा ऐसे सब बोलते हैं, सब सतियों के नाम से उच्चारण करते हैं। तो विवाह हो गया और वसुधा ने आई, परस्पर वर्णमाला के एक्सचेंज हुआ और उन्होंने फिर परिक्रमा की है यज्ञ नित्यानंद के साथ, यज्ञ परिक्रमा करके हैं घर में गई। हाँ, उस रात तो वो नित्यानंद पर वहीं रुके। दूसरे दिन सुबह सुबह भोजन के लिए जब व्यवस्था ब्रेकफास्ट है, तो नित्यानंद प्रभु स्नान पान करके अपने नित्य कर्म करके स्नान पान करके बैठे हैं आसन में, और ये छोटा बहन वसुधा की छोटे बहन थी जाह्नवा है, वो थोड़ा यंग एज में थी 14 साल 13-14, तो वो आकर खाना है क्या परोस रहे थी। अब तो मजाक होती ना, थोड़ा कहते ना सा बहनई और साली कहते, दोनों मजाक होता है। तो जब वो खाना दे रहे थे, नित्यानंद प्रभु मना करते और नहीं चाहिए, वो नहीं मना करने से और हंसते हंसते और डालती थी है, लजली हो पर तो उसका जैसे देते थे बार बार साड़ी भी खिसक जाती थी सिर से, ऐसे हंसती थी और ऐसे ही फेर देती थी मजाक है। तभी ऐसे मजाक नित्यानंद प्रभु ने हाथ पकड़ के बैठा दिए बाजू में, जब पकड़ लिया उसका हाथ बाजू में बैठा, बट सूर्यदास पंडित उस बाजू में जाते थे, उनकी कहे कि आपने तो मुझे शादी के रूप में तो आपके ये कन्या को शादी दिया, किसको? पत्नी के रूप में मैं इनको स्वीकार कर लिया, किसको? वसुधा को। लेकिन आपने मुझे दहेज क्या दिया, दहेज के रूप में क्या दिए है? मैं जो छोटा लड़की आपका ये है, इसको मैं दहेज के रूप में लेके जा रहा हूं। इसको सुनकर सब हंसने लगे, जोर जोर हंसने लगे। सूर्यदास पंडित ने कहने लगे, जाति प्राण धन गृह परिजन मोर एक काले समर्पण कैला पाए तोर। कि हे नित्यानंद, तुमको मेरे कौन सा चीज अधेय है? जब तक मैं आपको पहचाना नहीं था तब तक तो मैं कुछ बोल रहा था, लेकिन मैंने जो साक्षात स्वप्न में देखा और मेरे बड़े भाई से ने मेरे छोटे भाई सूर्यदास से आपकी महिमा को सुना, तो आप तो साक्षात बलराम हो, साक्षात भगवान हो, और आपको अब मेरे लिए क्या अधेय है? मेरे जाति, मेरे प्राण, मेरे धन, मेरे घर परिवार परिजन है सब कुछ मैं आपके चरण में एक साथ में समर्पण कर दिया है। इसलिए छोटा सा कन्या कौन सा जाह्नवा को आप लेना चाहते, तो बहुत आनंद की बात है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये दोनों को लेकर आ गए, इसको वसुधा को तथा जाह्नवा को है, दोनों के साथ उनकी विवाह हो गया। और विवाह के बाद फिर नित्यानंद प्रभु वापस आए शिवासंगन में, थोड़ा दिन शिवासंगन में रहे। मालिनी और शिवास उनके माता पिता के रूप में तो पहले से ही मानते थे, इन्होंने बड़े आनंद में तीनों को हमने दोनों पत्नी के साथ नित्यानंद की सेवा करने लगे। वहां से निमंत्रण आ गया, कहां से, शांतिपुर में अद्वैताचार्य निमंत्रण के निमंत्रण की, फिर वहां गए, फिर वहां भी कुछ दिन रहे, फिर माता सची ने निमंत्रण की, फिर सची के अंगन में आके माता सची की भी सेवा स्वीकार किए। ऐसे ही भिन्न भिन्न भक्तों के लोक ने सभी राघव पंडित के घर में कुछ देर ऐसे ही भ्रमण करके इसे गोरु पार्षद के रूप में सभी के घर में बड़े आदर के साथ सभी भक्त लोग ने नित्यानंद तथा उनकी दो पत्नी जाह्नवा वसुधा को सत्कार करते थे। ऐसे घूमते घूमते बड़गा ने वो जो पहुंच गए कहाँ, खड़दह है पानी है, जब जाओगे आप कृष्णनगर से सियालदा स्टेशन में पानीहाटी स्टेशन के बाद में आएगा खड़दह स्टेशन। ये खड़दह स्टेशन में ही नित्यानंद प्रभु अपना प्रचार के मुख्य केंद्र बनाए थे, प्रचार केंद्र विशेष रूप में जाह्नवा माता वहीं से प्रचार सर्वत्र करती थी। आज भी उस यहाँ पर राधा श्याम सुंदर की विग्रह है, जिस विग्रह को हाँ नित्यानंद प्रभु की बड़े, कोई कहते कि नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रतिष्ठित किए थे, कोई कहते उनके बड़े पुत्र गिरिजेंद्र हैं प्रभु प्रतिष्ठित किए थे, वो विग्रह राधा श्याम सुंदर विग्रह आज भी सेवा प्राप्त करते हैं। वहीं पर नित्यानंद प्रभु ने बहुत दिन तक अपने दोनों पत्नी वसुधा जाह्नवा के साथ रहा किए, वहीं से उन्होंने सर्वत्र फिर प्रचार में जाते थे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की नित्य लला में प्रवेश करके कहाँ पर, एक चक्र में जाकर बांके राय विग्रह में चैतन्य महाप्रभु जब गोपीनाथ में अंतर ध्यान हुए तोटा गोपीनाथ विग्रह में, तो नित्यानंद प्रभु भी एक बार भ्रमण करते करते पहुंचे एक चक्र में, और जिस विग्रह को बचपन से पूजा करते थे बांके राय विग्रह में सभी के सामने नृत्य कीर्तन करते करते उसी विग्रह में प्रवेश कर गए। नित्यानंद प्रभु की अंतर्ध्यान होने के बाद जाह्नवा माता ने फिर आगे प्रचार ने तो उनको नित्यानंद प्रभु ने जाने के पहले उनको उपदेश देकर गए थे, मेरे बात में ये प्रचार कार्य को आप ही आगे बढ़ाना, गौरांग की विच्छेद में यहाँ रहना संभव नहीं है, इसलिए तुम अभी मेरे कार्य को आगे बढ़ाना। इसलिए फिर जाह्नवा माता ने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए, तो इसलिए फिर आचार्य जी की भूमिका निभाई, इनको सारे छह गोस्वामी समेत सारे वैष्णवगण नवदीप तथा माया जो नवदीप धाम तथा वृंदावन धाम में जितने भी कोड़ी वैष्णव थे सभी इनको आचार्य पद में अधिष्ठित किए। किसको, जाह्नवा माता को, जानते थे कोई साधारण स्त्री नहीं है, नित्यानंद की शक्ति है, नित्यानंद के आदेश को, आदेश है कि इसको आचार्य भूमिका निभाना। तो इसलिए उन्होंने जो कई सभी कई भक्तों को विशेष उन्होंने कृपा किए, विशेष रूप में श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य आचार्य की भूमिका निभाए, भागवत के आचार्य थे, जीव गोस्वामी से भागवत पढ़े, जो गए पढ़ के जब गए माता जाह्नवा माता को मिले, जाह्नवा माता ने कही कि तुम जाओ अभिराम के पास जाओ, अभिराम के पास में एक जय मंगल चाबुक है, उसको जो जिसमें वो चाबुक में प्रहार करता था उसका शरीर में कृष्ण प्रेम की संचार हो जाता है, वो श्री राम के अवतार थे, इसलिए इन्होंने इनको भेजे, श्रीनिवास आचार्य को जो भेजे तो उन्होंने तीन बार प्रहार किया इनको, अभिराम ठाकुर ने तीन बार चाबुक में प्रहार, दूसरे बार पढ़े तो उनके पत्नी मालिनी ने पकड़ लिए, वृंदा देवी के अवतार थे, कहे हो गया तीन बार तो हो गया, तब से श्रीनिवास ठाकुर पूरे सच्चा जो देखते देखते सभी लोग वहीं पर नृत्य कीर्तन इतने घंटे घंटे तक नाचने लगे हैं, निताय गौरांग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कई कहानी है, विशेष रूप में सारे कहना संभव, जाह्नवा माता पूरा दो तीन घंटे होने से क्लास पूरा होता। जाह्नवा माता ने एक बार वृंदावन में आए थे, तीनों विग्रहों को दर्शन किए, जब आ रही थे रास्ते में भी कई घटना हुई, एक उन्होंने बृहत इन्होंने जब आ रही थी बृहत ग्राम रास्ता में एक गांव में रात्रि समय शाम के समय विश्राम कर रहे थे वहीं, उसमें से गोस्वामी लोग भी थे, छह गोस्वामी लोग सारे गौर पार्षद सब जाह्नवा माता को एक उच्च व्यासासन में बैठा कर उनकी आरती कर रहे थे, उनकी आरती उतार रहे थे, तो इसको देखकर गांव में सब चंडी के भक्त थे, चंडी भक्त पूरा गांव पूरा नास्तिक था, कहे कि देखो ये व्यक्ति ये लोग ने कि माँ ये के औरत को बैठा कर पूजा कर रहा है, इसको आरती उतार रहा है, इनके पास तो बहुत गहना दिख रहे हैं, इनके पास बहुत अलंकार फलंकार अच्छे, आज रात को माँ काली के पास में बलि चढ़ा ये सबको लेके बलि चढ़ा देंगे, ऐसे कहकर सब प्लान बना के गए, लेकिन इस हमारा काली मंदिर में नहीं आया, माता काली को पूजा न करके ये औरत को बैठा कर पूजा कर रहे हैं, बड़े हिंसक बने, लेकिन उसी रात्रि में काली ने साक्षात स्वप्न में आकर सारे जितने भी नास्तिकों को कहा कि देखो तुम सभी जाकर जिसको तुम साधारण स्त्री समझकर अपराध क्या है उसको मर्डर करने की भावना लिया है, तुम जाकर उसकी चरण में गिरो, तुम जानते नहीं हो वो तो मेरे भी प्रभु मेरे भी स्वामिनी है, हा? ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, नित्यानंद बलराम की शक्ति है, नहीं तो मैं तुम स्वयं एक खड़ग में तुम सभी को समाप्त करूंगी, जाकर उसके शरणागत हो और उसे दीक्षा प्राप्त करके उसके शिष्यता स्वीकार करो। सो भाग भाग के फिर सुबह सुबह सब आए आके एक बात एक दंडवत करी पड़े सो है सो माफी मांगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये बृहद ग्राम के सारे निवासियों को माता जाह्नवा ने शिष्य बनाकर वहां प्रचार करके ही फिर आगे बढ़े। आगे कुतुबुद्दीन नाम के डकैत जंगल में रहता है, वो भी सोचा था कि इनके पास बहुत घना इनको लूटूंगा, रात्रि में उस डकैत वाले जो आ रहे थे और जहां पर वो विश्राम कर रहे थे सोए हुए थे, लेकिन चारों साइड देख रहे थे कि वो लोग इनके सन्निकट में जो जा रहे थे सांप से वो इनको काटने के लिए भागते थे, ए विशाल विशाल सांप निकाल कर मारने लगे, तो वो लोगों ने पथभ्रष्ट होकर इधर उधर जंगल में घूम गए। शून्यवाणी हुआ, मूर्ख तुम लोग जानते नहीं हो वो साधारण स्त्री नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, जाकर उसे क्षमा प्रार्थना करो। तो फिर वो लोग ने सब आकर भी सरेंडर किए, उनको भी सब दिखा देकर भक्त बनाकर माता जाह्नवी आके पहुंचती पे कई लीलाए हैं सब आके वृंदावन में पहुंचती हैं और मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ के दर्शन की गोस्वामी लोगों ने इनकी विशेष रूप में सेवा की। लेकिन उन्होंने देखे कि गोपये वापस जाकर तो आपने एक विग्रह स्वयं का एक विग्रह बनाए हैं, एक विग्रह बनाकर और श्रीनिवास आचार्य और परमेश्वरी ठाकुर दोनों को कहे कि 700 स्वर्ण मुद्रा के साथ इनको भेज दिए, क्योंकि इस वस्त्र अलंकार के साथ ये विग्रह को लेकर गोपीनाथ के साइड में जो राधा रानी जो है तो राधा को राइट साइड में रखी, ये विग्रह को इनके बाहर साइड में रख देना, इनका सेवा पूजा कर वहीं पर होगा। कौन है क्या कुछ पता नहीं, लेकिन जाह्नवा माता के आदेश को उल्लंघन करने का कोई इसकी शक्ति नहीं है। तो जाह्नवा माता कहने पर फिर वो विग्रह को उनकी वो विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिए। लेकिन पुजारी लोग देखे कि राधारानी को जब से ट्रांसफर किए राधारानी बहुत गुस्से में थी, कई प्रकार के अनिष्ट होने लगा। फिर वो जयपुर से राजा ने उस समय मानसिंह थे वो ने आए, राजा मानसिंह आए देखिए ये क्या है, दो दो राधा दोनों साइड में है कि गोपीनाथ की कैसे है, महान कृष्ण भक्त थे तो उनको समझ में नहीं आया और ये लोग बोले ऐसे जानना होता इनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उस रात में मानसिंह को स्वप्न में आई जाह्नवा माता, कह कि हे राजन आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं राधा रानी का ही छोटे बहन हूँ, मेरे नाम अनंगा मंजरी, ये जो राधा है अकारण में मान करती है गोपीनाथ को, परेशान करता है बहुत है गोपीनाथ की, अकारण में मान करती रहती है गोपीनाथ को दुखी करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों का मान को मिटाकर दोनों में संपर्क को मधुर करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई है, आप मुझे इसी रूप में समझना, मैं राधा रानी का ही छोटे बहन है। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के सारे डाउट क्लियर हो गए, वो अनन्या के सारे पुजारी को बुलाकर बोला अभी मैं समझ गया ये राधा रानी के छोटे बहन है ये जो विग्रह आके यहाँ रह रहे हैं, इसलिए इनको अनंग मंजर, जहां पर गोपीनाथ की विग्रह रहता है राधा रानी के साथ ये रहती है, राधा रानी की छोटे बहन अनंग मंजरी रहती है। तो इसलिए ये जाह्नवा माता की लीला में ये सम्मिलित है। लेकिन अभी समय तो हो चुका है, लेकिन कम और कई कहानी है, लेकिन मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, फिर थोड़ा मधु पंडित के बारे में दो चार पद कहना। लेकिन वही गोपीनाथ जी की जाह्नवा माता एक बार फिर बाप में आई थी, आकर जो गोपीनाथ जी की ऐसे आरती कर रही थी, गोपीनाथ का आरती करते हुए, आरती करने के बाद जब पंखा समाप्त करी पंखा ऐसा ही झुलते झुलते बाहर में पब्लिक की तरफ पंखा दिखा रही थी, गोपीनाथ ने उनकी साड़ी पकड़ के खींच ली, वही अंतर्ध्यान हो गई और दोबारा कोई जाह्नवा माता को देखे नहीं, वो शरीर से छोड़ के नहीं गए कि उनको कहीं लेकिन जलाया नहीं आग में, तो ये शरीर वहीं आरती गोपीनाथ ने इनकी साड़ी को पकड़ खींच ली और वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार ये जाह्नवा माता कोई साधारण स्त्री जैसे नहीं है। तो उसी मधु पंडित भी ये गोपीनाथ जी के प्राकट्य करता है, ये गदाधर पंडित की शिष्य थे और ये महान प्रेमी भक्त थे। जब गौर गदाधर जब ने नवदीप छोड़कर आ गए जगन्नाथपुरी में, इनके विच्छेद को सहन न करके उन्होंने वृंदावन दिग्विजय मार्ग में भागे, सोचे कि अल्टीमेटली भगवान चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन में ही जाएंगे, इसलिए वृंदावन आकर यहाँ पर गोस्वामियों के पास गोस्वामी की धारा में है, वहाँ पर एक परमानंद भट्टाचार्य रहते थे केसी घाट में, वो रूप सनातन के मित्र थे, उन्हीं के पास में आके रहने लगे। और रहकर प्रत्येक दिन वृंदावन के जंगल में 12 वन में भ्रमण करते थे, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन गौर गदाधर हा गौरांग, वो बड़े बिहोड़ होते थे। लेकिन कृष्ण को प्राप्ति की बड़े तीव्र इच्छा इनकी जब हुआ, बहुत तीव्र इच्छा था कि भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन करने की। एक बार उन्होंने जमुना के किनारे बैठे हुए, जमुना में बाढ़ आया था, पास में मिट्टी से एक अखड़ खा के ऐसे गिर रहा था मिट्टी कट पड़ के, तो बैठे थे अभी उनके जहां बैठे उनको शोधबोध नहीं है, रो रहे थे गोपीनाथ की चिंतन करके ही है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ऐसे गोपीनाथ को पुकार कर बिहोड़ हो रहे थे प्रेम में। लेकिन पता नहीं था कि वो जहां बैठे थे उसके चारों साइड में कट पड़ गया था, अभी कुछ ही क्षण में मिट्टी इसके साथ वो भी समाधि हो जाते थे, किसमें जमुना में। गोपीनाथ को और सहन नहीं हुआ, गोपीनाथ ने तुरंत ही बंशीवट श्रीमान रास रसारंभी बंशीवट तटस्थ कर्षण वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ सियस्तुनो। गोपीनाथ अपने मधुर बंशी बजाने लगे। हाँ तभी ये तो मध्य बंशी के वादन सुनकर उसकी तरफ भागने लगे, ये दौड़ उठ के बंशी जहाँ जिस दिख से बंशी का सुर आ रहा था, उसी समय उन्होंने जाकर देखे कि कोई जगह में लिखा होता कि जो कट पड़ा था वो जो कट गिर गया तो उसी के बीच में मिट्टी के अंदर से गोपीनाथ के विग्रह प्रकट हुए। और कोई कहते कि नहीं, ये जो भाग के गए गोपीनाथ जी बंशी बट के नीचे खड़े थे, इनके आलिंगन कर लिए। गोपीनाथ जी ने कहे कि तेरी भक्ति में मैं प्रसन्न हूं, क्या वर चाहती हो? तो उन्होंने कहे कि मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसा ही सदा सदा मेरे सामने रहिए, मेरे साथ रहिए और मैं आपको सेवा करते रहूं, आपकी सेवा करते रहूं, आपके लिए कुकिंग करूंगी खिलाऊंगी आपके भजन गाऊंगी, ऐसे इच्छा प्रकट हुआ। तो गोपीनाथ ने फिर विग्रह के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ज्यादा लोग स्वीकार करते कि जो जमुना किनारे जो कट पड़ गया था ये बैठे थे, जो भागे ये मिट्टी जब गिरा जमुना में उसी मिट्टी के अंदर से ये विग्रह निकले, गोपीनाथ जी के विग्रह। तो इस प्रकार मधु पंडित इन गोपीनाथ विग्रह को स्थापना की है, मदन मोहन को सनातन गोस्वामी और गोविंद देव को रूप गोस्वामी ने प्रकट किए, और गोपीनाथ विग्रह जो कि प्रयोजन विग्रह माने जाते हैं गौड़ीय वैष्णवों की, तो इनको मधु पंडित ने प्रकट कराए थे। आज उनकी तिरभा मधु पंडित की समाधि आप जाओगे तो आज भी है गोपीनाथ घेरा में, सही गोपीनाथ उनकी मधु पंडित की समाधि भी है। तो इसी प्रकार समय हो चुका है, मैं और समय नहीं लेना चाहता, बोल रहे तो एक एक आचार्य बारे में पूरा क्लास जाता है, केवल सीता देवी के बारे में एक क्लास होता है, जानना माता के बारे में मधु पंडित के बारे में पूरा क्लास हो सकता है, लेकिन समय हो चुका है इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। सीता देवी आविर्भाव महा महोत्सव की जय, जाह्नवा माता आविर्भाव महा महोत्सव की जय, श्रील मधु पंडित तिरोभा महा महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि भव, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय।